ओम शांति। वेलकम ऑल। हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी आ चुके हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। आप सीनियर मोस्ट दीदियों में से एक हैं। आप ब्रह्म कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो कि गुड़गांव में है, आप उसके डायरेक्टर हैं। ब्रह्म कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी के आप मेंबर भी हैं। दिल्ली जोन की सेवाओं के आप निमित्त हैं। जैसे कि इस बार आप जूरिस्ट विंग में आए हैं, ऐसे हमारे अन्य विंग्स हैं, आईटी विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विस विंग की आप चेयरपर्सन भी हैं। आप इस ज्ञान योग का बाल्यकाल से अभ्यास कर रहे हैं। आप बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी। आपने एज अ लेक्चरर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 1973 में आपने अपना जीवन इस नोबल कॉज के लिए समर्पित किया। आपने वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करके मिलियंस एंड मिलियंस आत्माओं को उनकी प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस की जो आध्यात्मिकता की जो लाइट है वो आपने उनके जीवन में जलाई है, उनके जीवन में परिवर्तन लाया है। आप बहुत इजीली समझ जाते हैं कि इस आत्मा को क्या चाहिए है, उस अनुसार उसको दे करके आप उसको परिवर्तित भी करते हैं, संतुष्ट भी करते हैं और ऊंचा भी उठाते हैं। आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी एंड वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज ऑरेटर एंड राइटर ऑल्सो। हमारी एक प्योरिटी मैगजीन है जो कि 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है, उसकी आप एसोसिएट एडिटर भी रहे हैं। आप मेरी जैसी अनेक बहनों को यहाँ देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी बहनें हैं। आप मेरी जैसी बहनों को टीचर्स ट्रेनिंग भी देती हैं और आपको समय प्रति समय बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सम्मानित किया गया। मैं सिर्फ दो का ही नाम लूंगी। आप यू आर सेलेक्टेड एज अ आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इन 1989 बाय जेसिस और लास्ट ईयर नव भारत टाइम्स में शिव शक्ति में 9 वुमेन्स को सिलेक्ट किया, उसमें से दीदी जी आप एक थे। आपने ब्रह्म कुमारीज को बहुत ही लंबे अरसे से देखा है। जैसे कि एक प्लांट ग्रो करता है तो हमने तो सुना है, दीदी ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। तो आज हम इस ब्रह्म कुमारीज के इतिहास को दीदी के अनुभव के द्वारा जानेंगे। आदरणीय दीदी जी, अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि दीदी का प्लांट और बैच के द्वारा वेलकम करें और आप तालियों के द्वारा कर सकते हैं। दीदी विशेष रूप से अपना समय देकर के हमारे बीच में आए हैं, हमारा सौभाग्य है। वी आर मोस्ट ब्लेस्ड टुडे दीदी जी दैट यू आर विद इन अस। आदरणीय आशा दीदी जी, थैंक यू।
ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ज्ञान सरोवर में अच्छा लग रहा है ना? तो अधिक समय ना लेकर विषय पर मैं सीधे उतरूंगी और आप सबके सम्मुख इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कहानी क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुई और वर्तमान समय क्या सेवा कर रही है, इसके लिए मैं आपको ले चलती हूं 1936 के करीब। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का पूरा नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना 1937 में हैदराबाद सिंध में हुई। जो पोर्शन आज पाकिस्तान में है, जो व्यक्ति निमित्त बने उनका नाम था दादा लेखराज लखी बाबू, और बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, भक्त भी थे, विष्णु जी की भक्ति करते थे, श्रीनारायण की भक्ति करते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे, गीता रोज पढ़ते थे, बिना पढ़े कभी जल स्वीकार नहीं किया। गुरु भी बहुत किए हुए थे, 12 गुरु किए थे, परिवार बड़ा अच्छा था, 5 बच्चे थे आपके, 3 कन्याएं 2 बेटे, और बिजनेस में बहुत ही सफल थे। बिजनेस उनका था हीरे जवाहरातों का, और बाबा डिजाइन बहुत सुंदर बनाते थे, राजाओं महाराजाओं के साथ संबंध था, नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, इंदौर के राजा आदि आदि। जीवन बड़ा सुखद चल रहा था, लेकिन मैं इनको बाबा कहूंगी, बाबा माना पिता। तो बाबा को किसी ने कहा था कि जब 60 वर्ष की आयु होगी तो आपके आपका जीवन 60 वर्ष तक है। बाबा उसी हिसाब से अपने सारे कारोबार करते थे, परंतु 19 जब बाबा अपना अनुभव सुनाते थे तो बाबा बताते थे कि 1930s में, बिगिनिंग 30s में बाबा को जैसे वैराग्य बहुत आना शुरू हुआ, इस पुरानी दुनिया से, इन सब चीजों से, धंधे से वैराग्य आना शुरू हुआ। मन ही मन बातें किया करते थे, ये सब क्या है। और कल ही हमने एक क्लास अपनी दादी जी की सुनी, जिसमें दादी जी ने बताया कि बाबा ने सबसे पहले मन को वश में करने का प्रयास किया। मन तो इधर उधर दौड़ता है, कहां कहां दौड़ता है, तो मेरा मन है, मेरे कहने पर रहना है, तो उसके लिए बाबा ने एकांत चुना, और एकाग्रता का ब्याह 6 महीने तक अपने फ्रेंड के घर में रहे बनारस में। वो कोठी मैंने देखी है, आज भी वो कोठी है, परंतु उसके गार्डन को हाफ कर दिया गया, कमर्शियल यूज में आ रही है। और वहां घंटों बाबा एकांत में बैठे हुए मनन चिंतन किया करते थे। एकाएक एक बार ऐसा होता है कि बाबा के पोतरे का जन्म होता है तो पार्टी देते हैं ना, तो पार्टी दी थी, और उस पार्टी में उन्होंने गुरु जी को प्रवचन के लिए बुलाया था। तो गुरु आए थे, प्रवचन दे रहे थे, सब लोग बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। एकाएक बाबा उस सभा से उठ गए और उठकर अपने कमरे की ओर गए, तो उनकी जो पुत्र वधू थी और जो उनकी पत्नी थी, दोनों ही बाबा के पीछे गईं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि गुरु लेक्चर दे और बाबा उठ जाए, तबीयत ठीक है क्या है तो फॉलो करना। तो उन्होंने क्या देखा कि बाबा अपने कमरे में पद्मासन में है और जैसे ही दादी ब्रज इंदिरा जो उनकी पुत्र वधु थी वो सुनाया करती थी, यदि जैसे ही दलहीज पे मैंने पांव रखा तो मुझे सारा कमरा लाल लाल नजर आया। और बाबा पद्मासन में हैं, आंखों से उनकी अश्रु धारा बह रही है और उन्होंने आवाज सुनी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो खड़ी रही, देखती रही। थोड़ी देर के बाद बाबा ने आंखें खोली तो बाबा की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कोई बल्ब जग रहे हो। तो बाबा कहते, वो कौन था, वो कौन था? बाबा को तो पता नहीं, समझ नहीं थी। एक लाइट थी, एक माइट थी। यह उनको पहला साक्षात्कार होता है निराकार ज्योति बिंदु का, लाइट। काम पूरा हो गया। बाबा ने समझा कि यह जो घटना घटी है ये गुरु के आशीर्वाद से है। तो उन्होंने गुरु जी को अप्रोच किया लेकिन गुरु जी को कुछ पता नहीं था। तो जैसे किसी को कोई बात पता ना हो तो चेहरे से पता लग जाता है ना, ऐसे ही बाबा को लग गया कि ये इनके इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अब बाबा को जैसे वैराग्य भी साथ साथ, जैसे मैंने बताया था पुरानी दुनिया से, बाबा की जो ज्वेलरी थी बनाई हुई इतनी प्रसिद्ध, अगर आप लोगों ने किसी ने लंदन विजिट किया हो क्राउन ज्वेल म्यूजियम, तो क्राउन ज्वेल म्यूजियम में बाबा के हाथ की बनी हुई ज्वेलरी जो क्वीन एलिजाबेथ के लिए बनाई थी वो वहां पर। तो हमारी दादी निर्मल शांता जो बाबा की बेटी थी वो गई तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया था ये बाबा के हाथ की है। तो वहां सिक्योरिटी वालों ने कहा आपको कैसे पता? बोला मैं उनकी बेटी हूं। तो वो उनको ले गए क्वीन से मिलाने के लिए, वो बचपन की यादें उनकी ताजा हो गई। और आज भी, अब तो शायद म्यूजियम में ज्वेलरी नहीं रखी है, वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन पहले जो वो मैंने देखी है, मैंने देखी है, रियल ज्वेलरी भी देखी है और वीडियो वाली भी देखी है। तो उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, आज भी है या नहीं पता नहीं, कुछ वर्ष पूर्व मैंने अखबार में पढ़ा था कि लक्की बाबू के नाम से कलकत्ता में बीसियों दुकानें चलती हैं। लक्की बाबू की सोने चांदी की दुकान, लक्की बाबू की हीरे जवाहरात की दुकान, ऐसे। वो बाबा की नहीं है, उनकी नहीं है, लेकिन जैसे किसी का नाम अच्छा होता है तो रख लेते हैं ना, तो ऐसे नाम रख करके वो किया। तो मैं बता रही थी कि इस तरीके से जब साक्षात्कार हुआ तो उसके पश्चात बाबा ने भक्ति ये सब कर रहे थे। थोड़े दिनों के बाद बाबा को दूसरा साक्षात्कार होता है और वो साक्षात्कार होता है श्री विष्णु का, और आवाज आती है अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी ये हो। अब एक साधारण गृहस्थी और ऐसा साक्षात्कार और वरदान मिले तत्त्वम, तो नेचुरली वो थोड़ा मानसिक रूप से हलचल में आ जाता है। थोड़े दिन और बीते, फिर साक्षात्कार होता है ये पुरानी कलयुगी दुनिया का महाविनाश। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों को याद हो 3942 की जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, फर्स्ट टाइम एटॉमिक बॉम्ब जो फेंका गया था हिरोशिमा नागासाकी में, वो 39-42 की वॉर में था, लेकिन बाबा को ये साक्षात्कार एटॉमिक वॉर के 1936 में हुए। ये होगा और सारी जैसे कलयुगी दुनिया का नाश हाहाकार, ये दुनिया शीघ्र जाने वाली है। और दूसरी ओर थोड़े देर के बाद दूसरा साक्षात्कार होता है जिसमें स्वर्ग की दुनिया है, स्वर्ग जहां शांति है, प्रेम है, सद्भाव है, बहुत अच्छा देश है। और आवाज आती है, ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त तुम हो। बाबा आश्चर्य में आते हैं कि मैं ऐसा बड़ा काम दुनिया को बदलने का, ये मैं कैसे कर सकता हूं। फिर उसके बाद बाबा को और साक्षात्कार होते हैं, आकाश से सितारे आते हैं, धरती पे पड़ते हैं और राजकुमार राजकुमारियां बन जाते हैं सत्युगी दैवी दुनिया के। इसी तरीके से ही जो सारे हमारे बड़े हैं ना, एक एक उसके आते हैं, बाबुलनाथ जी ये सब आते हैं, बाबा का आलिंगन करते हैं साक्षात्कार में और वरदान देके जाते हैं तत्त्वम। तो बाबा काफी इन सब चीजों को देखते हुए हलचल में थे, बहुत ज्यादा हलचल में। तब बाबा बनारस चले जाते हैं और वहां पर जाके मनन चिंतन में लग जाते हैं। फिर जब बाबा आते हैं हैदराबाद में, तो वहां पर जैसे गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता पढ़ते हैं उसके नए नए अर्थ बाबा को इमर्ज होने शुरू होते हैं, तो वो शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो मुझे कोई बात अच्छी लगेगी तो मैं आपसे भी शेयर करूंगी, आपको अच्छी लगे आप उनसे शेयर करेंगे। धीरे धीरे जिसको हम कहें एक सत्संग का रूप बन जाता है, जिसको ओम की ध्वनि वो लोग किया करते थे, ओम ओम करके करते थे, जिसका भाव आता कि आप आत्मा है, ओम हम आत्मा को कहते हैं। तो उसका नाम, क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे ना, तो नाम पड़ गया ओम मंडली। अब उस समय जो संसार की हालत थी वह बहुत दयनीय थी, माताएं बहनें जो सिंध था वो बहुत दयनीय दशा में था। माताओं बहनों को तो कुछ समझते ही नहीं थे, वस्तु के रूप से डील करते थे। सिंधी लोग थे, उनके बिजनेस स्पेन वगैरह में थे, कभी आते थे, पीछे महिलाएं फ्री होती थीं, तो ज्यादा महिलाओं ने आना शुरू कर दिया क्योंकि फ्री है और कोई काम नहीं है। तो महिलाओं के अधिक आने से धीरे धीरे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आनी शुरू हो गई। हाँ, भाई लोग भी आते थे लेकिन भाइयों की संख्या कम थी, महिलाओं की ज्यादा थी। अब रोज आप सत्संग करेंगे, रोज आप गीता का पाठ करेंगे, तो गीता में तो लिखा है कामेशु क्रोधेशु, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल लेते हैं, आपकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, जिसके फल स्वरूप जब इनके पति विदेश से लौटे तो वो देखते, अरे हमारी तो महिलाएं बदल गई हैं, ये तो वो रही ही नहीं, ये क्या हुआ। तो थोड़ा ऑपोजिशन शुरू होता है और वो ऑपोजिशन में नेचुरल है, जिसके घर गृहस्थ में ऐसा होगा वो थोड़ा बौखलाएगा तो सही। तो काफी ऑपोजिशन सिंधी समाज था, एक से दूसरा, दूसरे तीसरे लगते लगते सारा समाज ही जैसे विपरीत, चंद लोगों को छोड़कर समाज विपरीत, बहुत कुछ हुआ, पिकेटिंग की क्या कुछ कहा। तो कहा बाबा आप ये नहीं कहो, कहा मैं नहीं कहता हूं, ये तो गीता में लिखा है, मैं तो सिर्फ ये पढ़ता हूं और सुनाता हूं, दैट्स ऑल। लेकिन वो फेज पूरा हुआ, ऑपोजिशन हुआ लेकिन वो फेज भी पूरा हुआ। ऑपोजिशन में लोगों ने ये कहा कि जो भी सत्संग सुनने आए वो अपने घर से परमिशन लेने लेकर के आए, परमिशन के बिना नहीं। तो वो बाबा ने पक्का कर लिया कि जिसको भी आना है ज्ञान अमृत पीने के लिए वो अपने घर से रिटर्न परमिशन लाए। वो सिस्टम हमारा आज दिन तक भी कायम है। कोई भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, रहते हैं, स्टडी करते जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई समर्पित होने चाहते हैं तो उनको पूरी लिखत अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, उनकी लिखत चाहिए, बिना उसके नहीं होता है। धीरे धीरे ये सत्संग बढ़ता गया, लोगों के जीवन में सात्विकता आनी शुरू हो गई, सतोगुण आना शुरू हो गया, अच्छी खान पान ये सब बदल गया। अब वहां से कराची आए और 5550 में भारत आना हुआ। लेकिन धोखेबाजी से उनको बुलाया गया। अपने 47 में पार्टीशन होता है तो उन लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत प्यार से सेवा की। खुदा के बंदे इनको कहते थे, बहुत प्यार से फरिश्ते इनको कहते थे, वाइट ड्रेस होती थी, व्यवहार अच्छा था, तो बहुत प्यार से उनको रखा। लेकिन सिंधी समाज के अंदर ये था कि हमको कोई रीत से इस संस्था को वाइप आउट करना है, खत्म करना है, ये इसको जड़ से खत्म करना है। तो उन्होंने युक्ति रची। युक्ति क्या रची कि कहा आप लोग दूसरे देश में बैठे हो, आप अपने देश में आओ, भारत में आओ, हम आपका सारा प्रबंध करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा ठीक है। तो तैयारी करके 350 भाई बहने उस समय थे, सब तैयारी करके जहाज भर के, आप हिस्ट्री हॉल में देखेंगे वो सारे चित्र लगे हुए हैं, बाबा आ गए। सामने कोई भी नहीं रिसीव करने वाला, उन दिनों टेलीफोन भी नहीं थे, कोई रिसीव करने वाला नहीं। अब जाए तो जाए कहां। तब बाबा को साक्षात्कार होता है और कहा कि आपके लिए माउंट आबू अच्छा है। अब माउंट आबू अच्छा है, बैठे जामनगर में, ओखा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह से माउंट पर आना है तो ट्रेन के द्वारा आबू रोड आए। आबू रोड पर आकर के पूछा, भाई कोई ऐसा मकान जहां पे 350 लोग रह सके, ऐसा मकान तो कोई नहीं बनाता है। तो एक ने कहा एक कोठी है भरतपुर राजा की, शायद आप लोगों का काम उसमें चल सके। तो वो कोठी आज भी माउंट में है, अभी वहां होटल बन गया है, लेकिन उस कोठी में आए। अब जब उस कोठी में आए, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूं, जब उस कोठी में आए तो कोठी के सामने शमशान था, तो आवाजें आती थी और क्या नाग बालाएं और ये बिच्छू और ये सब चीजें, ये बहुत कुछ निकलते थे। परंतु वातावरण क्योंकि पॉजिटिव था तो एक भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भय का वातावरण जरूर बच्चों में रहता था। तो बच्चे मैं कह रही हूं आप जैसे बच्चे, इस आयु के बच्चे ऐसे, तो ये जरूर रहता था। तो वहां पर योग और तपस्या। फिर हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, बाबा ने जब ओम मंडली की स्थापना की तो अपनी सारी चल अचल संपत्ति बाबा ने ट्रस्ट के नाम पर समर्पित कर दी। 5 बहनों का एक ट्रस्ट बनाया और सब कुछ उसमें समर्पित कर दिया। उसके बाद बाबा ने कभी भी पैसे को जिंदगी भर हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं। वो पांच बहनें ट्रस्ट की मालिक थी। इस प्रकार बाबा को देख करके औरों ने भी समर्पण किया, दो अन्य परिवारों ने भी समर्पण किया। अब वो जो धन था, उस धन से 350 भाई बहनों की परवरिश हो रही थी। आप जानते हैं कि यदि आप खाते जाएं तो कुआं भी खाली हो जाता है, कोई कमाई तो कर नहीं रहे थे, खा ही रहे थे। तो इस प्रकार कम होते 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 एक दिन ऐसा आया कि कैश बॉक्स में केवल 4 आना जाके बचा। जब घर में ऐसी हालत होती है तो माता पिता क्या करते हैं, इकोनॉमी करना शुरू करते हैं, सब चीजें देखते हैं। तो वो 4 आना रहने से पहले इकोनॉमी शुरू हो चुकी थी। तो अब परीक्षा का दौर शुरू हुआ, तो भगवान का काम है, तो भगवान भी तो अपने उन लोगों को साथ लेगा जो स्ट्रांग है, जो कच्चे पक्के होंगे वो क्या साथ देंगे। तो ऐसे निश्चय की परीक्षा आरंभ हुई। आपसे अगर कोई पूछे आपने कितनी रोटी खानी है तो आप कहोगे मुझे खानी ही नहीं है। उन दिनों में पूछा जाता था रहने वालों से, उतनी बनती थी। ऐसे बेगरी के बहुत सारे किस्से जो परीक्षा के रूप से थे। 15 दिन ज्वार की आधी रोटी और एक गिलास लस्सी ये मिला, 15 दिन। कई तो इसमें छट गए, जो कच्चे पक्के थे छट गए, जो मजबूत थे वो स्थिर रहे और आज भी वो जिंदा रहे। अब तो कोई नहीं रहे हैं उस समय के, लेकिन अंत तक वो लोग रहे। उसमें परीक्षाएं जो थी 2-3 प्रकार की थी। एक उनके मित्र संबंधियों के पत्र आने शुरू हो गए, अरे ओम मंडली तो जा रही है, खाली हो गई, ये हो गया, तुम कहाँ जाओगे आदि आदि। तो जो कच्चे पक्के थे उनको लगा भाई सच में क्या होगा, इससे तो अपने घर चले जाएं तो अच्छा है। तो कई तो यूं चले गए, कई अपने स्वास्थ्य का बहाना लेकर के, हमारा स्वास्थ्य यहाँ ठीक नहीं है, उस बहाने से चले गए। कई ये सोच करके आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, यूं चले गए। तो जाके बहुत थोड़े 108-120 लोग बचे, इतने लोग बचे जो कंटिन्यू रहे। फिर क्या होता है कि ये फेस भी हमारा कुछ समय चला, माउंट आबू में चला। इसकी स्टोरीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये भगवान का कार्य है, ब्रह्मा उसका नहीं था, लखी बाबू का नहीं था, भगवान का कार्य। एक दिन की घटना सुनाती हूं। जब सबको खाना दिया जा रहा था तो बहनों ने कहा एक ही बार दाल मिलेगी, दूसरी बार नहीं। तो एक साथ में बाबा भी बैठ साथ ही खाते थे, उस बहन को दोबारा चाहिए थी तो बाबा ने अपनी कटोरी उसको दे दी और बाबा अपने कमरे में चले गए, ध्यान योग अवस्था में चले गए। एक आध दिन के बाद एक बैलगाड़ी अनाज के बोरियों से लदी हुई आई और आकर के कहते हैं ये यहां पर हमको देना है, हमको ये कहा गया है। कहा हमारे घर की नहीं है, जो पहरे पर थे कहीं हमारे घर की नहीं हो सकती, हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है। मार्जिन नहीं थी ऑर्डर करनी है, पैसा चाहिए ऑर्डर करने। कहा नहीं, ये मेरे को यही कहा गया है कि यहां पर ही डालना है, तो मैं तो यही डालूंगा। किसकी कमाल, वो अनाज इतना आया बैलगाड़ी भर के, किसकी कमाल। कोई मांगने तो नहीं गया, कोई किसको कहने तो नहीं गया, अपने आप। इसी तरीके से उन दिनों में अगर आपको याद हो पुराने जमाने में माताएं क्या करती, इनलैंड लेटर्स होते थे ना, पोस्ट वाले होते थे, उसमें डाल करके कुछ पैसे भेज देते थे। एक दिन घटना, जिस दिन चार आना बचा तो भोजन बनाने वाली बहन पूछती है बाबा से, बाबा क्या करना है, खाना क्या बनेगा? बाबा ने कहा मातेश्वरी जी से पूछो। मातेश्वरी से पूछा, वो कहती है बाबा से पूछो। तो वो हैरान हुई, कहते उनसे पूछो। वो कहे मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको पूछूँ? बाबा ने कहा तुम इतने बजे आना। वो आई और उस समय उसमें पोस्ट में कुछ पैसा आया जिससे खरीदा गया। अरे बाबा निमित्त उसने ये एकदम बेफिकर थे, अचल अडोल थे। निमित्त भाव जिसको कहा जाता है कि यज्ञ ये मेरा नहीं है, उसका है, वो संभालने वाला है, वो खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं खिलाएगा नहीं खाएंगे। और उसने खीर पूरी भी खिलाई है तो नमक रोटी भी खिलाएगा। तो हम बाबा को ये फुल निश्चय भी था और फुल ये था। ये सारी जो चीज है घटना, ये मैं बताना चाहूंगी, ये ब्रह्मा की नहीं थी परंतु ऑलमाइटी की। ऑलमाइटी मैं कहती हूं परमात्मा को। परमात्मा के महावाक्य हैं, जब धर्म की अति ग्लानी है तो मैं आता हूं, और अति ग्लानी के चिन्ह तो दिख रहे थे। तो परमात्मा को आना ही है और अपना कर्तव्य करना ही है, ये पक्का था बाबा को। तो बाबा यही कहता था, ये मैंने तो नहीं किया, ये करने वाला कौन? ऊपर वाला है। उनका उनमें बहुत फेथ। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे 1952 से सेवाओं का आरंभ हुआ। सबसे पहले दिल्ली में आए और दिल्ली में यमुना घाट पर दो बहनें आईं, मनोहर इंद्रा और आत्म इंद्रा। यमुना घाट पर पहलवान लोग रहते थे। ये दोनों बहनें एकदम देवियां, तपस्विनियां, चेहरे पर नूर, और यमुना घाट पर जो आते थे उनको ज्ञान सुनाती थी और तपस्या करती थी। यमुना घाट पर आपको याद होगा दिल्ली के लाला जगन्नाथ होते थे। लाला जगन्नाथ जी की माता जी प्रतिदिन यमुना जी जाया करती थी। उन्होंने देखा ये दो कन्याएं लगते तो भले घर की हैं, ये यहां कैसे? तो उनको बहुत लगा नारी जाति। तो जो चांदनी चौक में गौरी शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर की धर्मशाला में उनको ले गए। वहां पर जब दादियां भाषण करती थी तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था, तो भक्त लोग आकर के वहीं बैठ जाते थे और ज्ञान सुनने में रुचि रखते थे। तो सारे भक्त इस तरफ आ गए। तो वो पुजारी जी ने बोला माता जी को, माता जी इन देवियों को यहां से ले जाओ, हमारे सारे जो भक्त हैं वो तो वहीं चले जाते हैं, इसलिए इनको यहां से ले जाओ, कहीं और इनको रखो। कोई बात नहीं। फिर वहां नजदीक में ही मॉडल टाउन है और स्थान है, वहां पर एक छोटा सा कमरा, रोशनारा रोड है शायद, वहां पर लेकर के छोटे से कमरे में रहे। तो सत्संग शुरू हो चुका था, लोग आने शुरू हो चुके थे और पहला सेवा केंद्र हमारा खुला 151 ई कमला नगर, ये पहला सेवा केंद्र खुला। फिर ये ज्ञान परिवार वालों के लिए है, केवल मात्र महिलाओं के लिए नहीं, हमारी यूनिट फैमिली है। तो फैमिली वाले आते थे। फिर धीरे धीरे करोल बाग खुला, रजौरी गार्डन खुला, अमृतसर खुला, ऐसे खुलते गए। अब लोगों के मन में गलत फहमियां बहुत थी, जो शायद आप लोगों ने भी सुनी होंगी, मुझे पता नहीं, समय बहुत बदल गया है, लेकिन गलत फहमियां क्या थी? ये ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं। किस किस ने सुना है? सुन रखा है, ये ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, इनके पास कोई ना जाना, जो जाएगा बस उनका ही बन जाएगा। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूं। जादू की कोई बात नहीं, ज्ञान का जादू जरूर है, हम ज्ञान सुनाते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, सशक्तिकरण आपका होता है, आप बुरी आदतों को एक धक से छोड़ देते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आजकल नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, एक लेक्चर में लोग परित्याग कर देते हैं नशे का, तो लोग तो यही कहेंगे ना, जादू हो गया, यही कहेंगे ना। लेकिन वो जादू नहीं है, ज्ञान का जादू है। कहते हैं भाई ये आंखों में सुरमा डालती हैं, इनका सुरमा माउंट आबू से आता है, तो आप देख लेना कहीं मिल रहा हो तो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात सुनिए जादू की। कहते हैं एक बात, जो कमला नगर में तिकोनिया पार्क है ना, हमारा कमला नगर सेंटर जो था उसके सामने तिकोनिया पार्क था। तो एक सज्जन भाषण कर रहे थे, मैं नाम पता नहीं सुनाऊंगी, भाषण कर रहे थे और हमारी दादियां ऐसी खिड़की में बैठ के सुन रही थी। तो वो सज्जन क्या कहते हैं, देखो ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई नहीं जाना, क्योंकि ये जादू करती हैं। और उस जादू में ऐसा प्रभाव है, व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के इनका ही बन जाता है। एक माता थी, ये वही भाषण कर रहे हैं, एक माता थी, उसने सुना था। और इनका जो भोग बनता है, गुरुवार के दिन इनके यहां भोग लगता है, उस भोग में हलवा बनता है, उस हलवे में ही जादू होता है। एक माता थी, उसने सुना हुआ था, तो वो इनके कमला नगर सेंटर पर गए। गुरुवार का दिन था, भोग लगा, भोग में हलवा बना था, उसने सुना था हलवा नहीं खाना, हलवे में जादू होता, तो वो हलवा ला करके उसने अपनी भैंस को जो खूंटे से बंधी हुई थी उसको खिला दिया। उस भैंस को इतना जादू चढ़ा, इतना जादू चढ़ा, उनके कमला नगर सेंटर पर पहुंच गए। और कमला नगर सेंटर की सीढ़ियां थी ना राउंड राउंड, थी तीसरी मंजिल पर था हमारा सेंटर, भैंस पहुंच गए। लोग कह रहे हां जी जी वचन, जो कहा वो ठीक है, ये जादू नहीं है, जादू है ज्ञान का, ज्ञान का जरूर है। दूसरा, कईयों को ये गलतफहमी है, इनके पास इतनी सारी यंग कन्याएं कहां से आती हैं, यंग बहनें और सब एजुकेटेड हैं, ये सब कहां से आती हैं? आप देख रहे हो यहां पे यंग बहनें घूम रही, कहां से आती है? मेरे से ज्ञानी जैल सिंह जी ने भी ये प्रश्न किया था कि कहां से ले आती हो तुम। मैंने कहा हम कहीं से नहीं लाते, हमारे बहुत सख्त नियम है, हम राह चलती किसी बहन को किसी कन्या को हम नहीं लेते। चाहे कोई, मैं जहां बैठी हूं रिट्रीट सेंटर में, मेरे पास कई केस ऐसे आते हैं, ज्वेलरी से लदी हुई होती हैं, सुंदर से सुंदर होती हैं, आंखों से आंसू बिलक बिलक के रोती हैं, हमको यहां रख लो, कहते हम नहीं रख सकते, हमारा नियम नहीं है। हाँ, हम उनको गाइड कर देते हैं ऑल इंडिया वेमेन कॉन्फ्रेंस और महिला संस्थाओं को जो ऐसा काम करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे नियम है। और वो नियम क्या है, हम किसी भी कन्या को यूं नहीं रखेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कन्या का माइंडसेट स्पिरिचुअल नहीं है तो हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मिसफिट है, हम नहीं लेते। दूसरा, वो कन्याएं जो अपने माता पिता के साथ आती है, ऐसी इश्यू है, ये अपने पेरेंट्स के साथ, एक साल की बच्ची थी तब से आती है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, पेरेंट्स चाहते हैं कि ये कन्या भी हमारी आपके जैसे सेवा में लगे, हम कहते हैं नहीं, कन्या को फ्री छोड़ो, जो उसकी मर्जी हो वो उसको करने दो। क्लास में आती हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, अगर उनका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है तो हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं इनको आप एनकरेज करिए, और अगर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड नहीं होता हम कहते हैं इनकी आप शादी करो, जैसे लाइफ में सेटल करना हो करो, लेकिन इस लाइन में नहीं देना, वो प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी। तीसरी बात, हम कन्याएं जो लेते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन में वो होती हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। पहले तो हम अलाउ करते हैं कन्या जितना पढ़ना चाहे पढ़ ले, क्योंकि ये उसकी संपत्ति है, जितना पढ़ना चाहे पढ़े। उसके बाद पढ़ाई के पश्चात अगर वो कन्या चाहती है तो उसकी ट्रेनिंग होती है माउंट आबू में, जिसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो सेंटर पर भेजी जाती है, सेंटर पर उसकी चेकिंग होती है, उसको 4-5 सर्टिफिकेट लेने हैं, वो खुद भी संतुष्ट हो, उसके पेरेंट्स संतुष्ट हो, उसकी टीचर संतुष्ट हो, जिनकी सेवा में उपस्थित है वो लोग भी संतुष्ट हो। और एक जगह नहीं, हम उन्हें भिन्न भिन्न जगहों पर भेजते हैं, 3-4 स्थानों पर। इस तरीके से 5 साल तक उनका ये प्रोबेशन पीरियड रहता है। 18 साल से कम आयु की कन्या हम लेते नहीं है, 18 वर्ष से 23 वर्ष तक उसके पास इनफ टाइम है अपने जीवन के बारे में डिसाइड करने का। उसके बाद भी अगर किसी का दिल करता है मैं वापस अपने घर चली जाऊं, कोई रोकने वाला नहीं है। आज 60 साल के बाद अगर मेरा दिल करे कि मैं अपने घर चली जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। हम कोई बॉन्ड साइन नहीं कराते हैं, हम कोई कुछ ऐसा नहीं करते हैं। पेरेंट्स से मिलना अलाउड है, पेरेंट्स आपके पास आ सकते हैं, आप पेरेंट्स के पास जा सकते हैं। क्यों छोड़ें? चैरिटी बिगिंस एट होम। जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया समझदार बनाया, आप उनसे संबंध क्यों तोड़ो? ये कहां का लॉ है? हमारे यहां ये सिस्टम नहीं है। पारिवारिक संबंध बना के रखो। हां, आपकी प्रायोरिटी आपका आपकी सेवा है, उस पर आप ध्यान दीजिए, वो सेकंड पे हो जाती है। वैसे भी देखिए, अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कॉल आती है तो डॉक्टर पहले अपने मेडिकल उसको पूरी करता है, बाद में अपने उसको देखता है। इस तरीके से कन्याओं का ये रहता है। फिर उसके पश्चात एक गलतफहमी ये भी, पता नहीं इनके पास पैसा कहां से आता है। ख्याल उठता है आप लोगों को या नहीं? नहीं उठता है? हमारी दादी जी कहा करती थी, आप पूछते हो पैसा कहां से आता है, मैं पूछती हूं आपका पैसा जाता कहां है। जहां आपका पैसा जाता है वहां हमारा नहीं जाता। सिंपल लाइफ है, आप सब देख रहे हैं, सिंपलिसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपलिसिटी में रहना आदि आदि। पहली बात, हमारे पास जो आने वाले भाई बहन हैं वो आपके जैसे हैं, और लगभग जो भाई बहन आते हैं टोटल ऑर्गेनाइजेशन की जनसंख्या को अगर हम लें तो 95% से भी ज्यादा, 98% लोग सब नौकरी पेशे वाले हैं। सबका अपना बिजनेस है, अपना नौकरी है। कुमारों को हम सरेंडर करते नहीं। कन्याओं का टीचिंग सिस्टम इसलिए, बहनों के द्वारा इसलिए कन्याएं आती हैं। भाई लोग हमारे सहयोगी हैं, किसी भी चीज को रन करने के लिए भाइयों का सहयोग चाहिए, वो हमारे भाई हैं, वो भी होते हैं। परंतु पहली बात, सब लोग कमाने वाले हैं। दूसरी बात, हमारे फाउंडर ने सिखाया, मांगने से मरना भला। आपको मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, मांगते हाथ ऐसा जाता है। आप दाता के बच्चे हो, आपको देना ही देना है, मांगना नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा ब्रह्मा कुमारी से कोई आकर के चंदा चीड़ा मांग रहे हैं, सुना कभी है? नेवर। हमारा असूल नहीं है। फिर आप कहेंगे आपके पास आता कहां से? आज देखिए, अगर मेरा जीवन बदलता है फैशन परस्ती से, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, फालतू फंड की चीजों से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीजों से मेरा धन बचता है, तो मैं क्या सोचूंगी? जहां से मेरे को इतना फायदा हुआ वहां पर मैं क्यों नहीं करूं? वो धन हम उसमें यूज करते हैं। कोई यहां पे ये फिक्स नहीं है कि आपको 500 देना ही है, नहीं, आपकी इच्छा है, वॉलंटरी। मैं आपको बता देती हूं, ये संस्था का नियम है, बूंद बूंद से तालाब। यहां आने वाले कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, हमारे पिताश्री ने सिखाया, कोई एक अगर चाहे तो एक बिरला एक टाटा को निमित्त बना सकते हैं जो सारे वर्ल्ड के सेंटर्स को चला सकता है, लेकिन वो नियम नहीं है। जो धन लगाएगा अपनी बोली बोलेगा, वो तो नहीं हो सकता ना। तो परमात्मा का कार्य है। परमात्मा ने हमें सिखाया खीर पूरी खाना, परमात्मा ने हमें सिखाया नमक रोटी भी खाना, तपस्या के बल से वो चीज। फिर मान लीजिए कोई बड़ा स्थान है वो बना, जैसे ज्ञान सरोवर बना, तो दादी जी ने ऐलान किया कि हर कोई जो भी क्लास में आते हैं वो एक एक रुपया रोज डालें। मान लीजिए मेरी क्लास में 30 लोग आते हैं, तो रोज का एक रुपया डालना कोई बड़ी बात तो नहीं है, डालते हैं। ऐसे करते करते सारे भारत के जो केंद्र हैं वहां से कलेक्शन आप सोचिए कितनी हो जाती है एक दिन में। फिर जो इंजीनियर्स हैं वो बनाने में लगते हैं, आर्किटेक्ट बनाने में लगते हैं, तो वो कहते हैं अरे हम दुनिया से कमाते हैं, ये तो आध्यात्मिक संस्था है, इससे क्या कमाना। इंजीनियर्स कहते हैं हमें रोटी कपड़ा चाहिए, जो हमको मिल रहा है हम अपना वो खर्चा इसमें लगाते हैं, सैलरी नहीं लेते हैं इसमें डालते हैं, बचत होती है। मेरा शीशे का बिजनेस है, मैं सोचती हूं यहां पे 100 लगना है, चलो कोई बात नहीं मेरी तरफ से 30 लग जाए, इस तरीके से होता है। इस प्रकार से पारिवारिक तरीके से सारी इंस्टीट्यूशन चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। ये भी मैं बता दूं, हमारे अकाउंट्स हर वर्ष ऑडिट होते हैं और सरकार को पेश किए जाते हैं, ओपन सिस्टम, सब कुछ ओपन क्लियर, ठीक है। तीसरी गलतफहमी, ये घर बार छुड़ाती है। आप बताइए घर बार छुड़ा के हम आपको रखेंगे कहां? हमारे पास तो जगह है नहीं। 90 साल से इंस्टीट्यूशन चल रही है, अगर घर बार छुड़ाते तो आपको रखने की जगह भी तो होती है इतनी? हमारे पास तो जगह नहीं है। आप 3 दिन के लिए आए, चौथे दिन आपसे पूछा जाएगा भाई आप 3 दिन कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, अब आपका यहां पर कैसे है पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड, इसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस है, ये बात है। इस प्रकार से यहां पे कोई घर बार छुड़ाने की बात नहीं है। फिर कोई कहते हैं भाई बहन बनाती हैं, हम नहीं बनाते, आपने खुद ने बनाया हुआ है। पूछो कैसे? जब आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, पति पत्नी दोनों जाते हो, हाथ जोड़ के आंखें मीट के क्या बोलते हो? तुम मात पिता हम बालक तेरे, बोलते हो? हां जी या ना जी, बोलते हो ना? तुम मात पिता हम बालक तेरे। पति ये तो नहीं कहता मैं पुत्र तुम्हारा, पत्नी ये तो नहीं कहती मैं पुत्र वधू आपकी, बोलते हो उस समय क्या बोल रहे हो? हमारे यहां ये जरूर है कि हम प्यूरिटी को महत्व देते हैं। सेंसुअल प्लेजर्स बहुत काल रहे, लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ अचीवमेंट करनी है तो आपको कुछ त्याग भी करना होता है, जो कंपलसरी नहीं है। हां, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो ब्रह्मा कुमार कुमारी का लकब मिलेगा वो तब ही मिलेगा जब पवित्रता की धारणा पर है, और पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर मन वचन कर्म की पवित्रता, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आप फाउंडेशन कैसी डालेंगे? यानी आपने स्वर्ग की दुनिया की फाउंडेशन डालनी है तो पवित्रता, स्वच्छता, निर्विकारिता ये चीज तो होनी चाहिए ना। ये हम सिखाते हैं, हमारी शिक्षाएं क्या है? आत्मा, हम सब आत्माएं हैं, देह नहीं है। आत्मा समझ करके एक दूसरे से व्यवहार करना। दूसरी बात, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है, कोई हमारे शत्रु नहीं है। तीसरी बात, आत्मा पुनर्जन्म लेती है, इसलिए अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है, कर्मों की गुह्य गति, त्रिकालदर्शी होके काम करना है। कोई मनुष्य आत्मा की सदगति कर नहीं सकती, इसलिए हम ह्यूमन गुरु को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं एक निराकार ज्योति बिंदु को। ये ब्रह्मा भी जो आपके सामने चित्र है, हम इनको नहीं मानते, हमारे गुरु नहीं है। इज ओनली मीडियम ऑफ द ऑलमाइटी, जो परमात्मा के महावाक्य हैं कि हे अर्जुन, मैं पर काय प्रवेश करता हूं, मेरा जन्म साधारण मनुष्य आत्माओं सदृश नहीं है, मैं प्रवेश होने योग्य हूं, और ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचता हूं, जिस यज्ञ से ब्राह्मण पैदा होते हैं, देवता पैदा होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब ये वो समय चल रहा है जब प्यारे भाई बहनों परमात्मा अपना कर्तव्य कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूं, मैंने बहुत शॉर्ट में सारी बातें सुनाई हैं, लेकिन आपको अभी खुद परखना है। आज संस्था के जो सेवा केंद्र हैं 140 देशों में, जहां पर वासुदेव कुटुंबकम, गोरे काले के झगड़े नहीं है, जात पात के झगड़े नहीं है, जहां किसी प्रकार की किसी चीजों को लेकर के वैमनस्य नहीं है। आप सोचिए, हम घर में चार प्राणी इकट्ठे नहीं रह सकते, या 140 देशों के लोग जब आते हैं इकट्ठे बैठते खाते पीते हैं, ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, परमात्मा के बच्चे और हम सब उसका परिवार। ये है वो हमारा पिता। अब हम आपको जानते नहीं, मेरे साथ रहने वाला जो है, कभी नहीं हमने एक दूसरे से पूछा तुम्हारी जाति क्या है, आज दिन तक नहीं पूछा है। स्पिरिचुअलिटी हमको इन सब चीजों से ऊपर ले जाती है। स्पिरिचुअलिटी में जब मेडिटेशन हम करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है, जिससे आने वाली समस्याओं का हम सामना कर पाते हैं। आजकल मेडिटेशन का बहुत महत्व है, और मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी ज्यूरिस कम्युनिटी के बड़े बड़े जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस मेडिटेशन को मानते रहे, जस्टिस कृष्ण आयर, नाम सुना है? जस्टिस कृष्ण आयर, जस्टिस पी बी सावंत, जस्टिस एन सेन, जस्टिस रे, बहुत सारे जजेस, मुझे मौका मिलता रहा है उनको यहाँ माउंट आबू की विजिट कराने का, मैं खुद जाकर के उनको मेडिटेशन के लेसन देती रही। जस्ट वेंकट चले हैं, बहुत सारे जजेस तो, और आपकी एडवोकेट कम्युनिटी के भी हैं, मुझे पता नहीं लालचंद वत्स का नाम आप जानते हैं या नहीं। लालचंद वत्स हमारे अपने ही करोलबाग के स्टूडेंट थे 73 में, अभी उनके दोनों बेटे हैं जगदीश वत्स और रमेश वत्स। लालचंद वत्स जो कि बहुत ऑनेस्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ट्रूथफुल एडवोकेट रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे, वकील कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, और इंटेलेक्चुअल्स अगर मेडिटेशन के महत्व को जान लेते, समझ लेते हैं, आपका ये संदेश कईयों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के निमित्त बन सकता है। आप सबके अंदर वो शक्ति है, तो मैं चाहूंगी आप यहां आए हैं, इससे पूर्ण लाभ लें, हर सेशन को देखें, और हर सेशन से आपको क्या नई चीज मिली उस पर आप ध्यान दें। इन शब्दों के साथ समाप्त करूं, ओम शांति। जो भाई बहन दिल्ली से आए हैं उनको मैं निमंत्रण देती हूं, अदरवाइज भी मैं सभी को निमंत्रण देती हूं, अगर आप लोग दिल्ली आए, गुरुग्राम आए, तो वहां बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है, ऐसा ही रिट्रीट सेंटर है, तो आप आके विजिट करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, ओम शांति।